नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में रेलवे, विद्युत और सड़क निर्माण से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव से संबंधित बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में चल रहे भूमि सुधार को और विस्तार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम होगा।
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं।
श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लिए रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों के इंडोर चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी।
कैबिनेट ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले के लिए राज्य उच्च पथ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर 3,740 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम कोसी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले 14 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पत्थरगढ़, पाटलिपुत्र, खैलाट, बैकुंठपुर, गुरारू, पालीगंज, सुपौल, गोपालपुर, गोपालगंज, एकमा, चंडी, पैरिया और साहेबपुर कमाल प्रखंडों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इन पर आरोप पत्र गठित करने के साथ ही इनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है।
14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बंद करें अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सिविल सर्जन और डीपीएम की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को व्यापक क्षति हुई है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
जमुई की एक अदालत ने गढ़ी थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन अन्य दोषियों को दो दो साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 20,000 रूपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पटना की एटीएस अदालत ने जाली भारतीय नोट की तस्करी में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में 10,882 युवाओं को नौकरियां मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चुन्नू लाल यादव को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गया के गुरुआ बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यापारी को गोली मारकर 35 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन चौक के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर बेगूसराय के कुरहा ढाला के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के थूसर पंचायत के चकला पैयार में 3 दिन से आतंक फैला रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने मार डाला। तेंदुए के हमले में 3 लोग भी घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रैयती भूमि के लिए नई नीति, बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम ने दिया तोहफा, राज्य कर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, एसआईआर कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हमारे वैभव सिक्सर किंग, आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केवटी के पीडीओ के 6 ठिकानों पर ईओयू का छापा। आज अखबार ने लिखा है, नए मानक से स्कूलों में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।